श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज 12 व 15 जून 1993 प्रातः 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश
हरे शरणम् 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 हरे शरणम्
एक बात है मारने को, अगर उसको समझा जाए तो बहुत ही लाभ की बात है, अत्यधिक लाभ की बात है। सब समझ सकते हैं, सब मान सकते हैं, सबकी योग्यता है, सबका अधिकार है, सब स्वीकार कर सकते हैं, करें ना करें आपकी मर्जी है। स्वीकार आप करें न करें इसमें तो आपकी स्वतंत्रता, परंतु उसको स्वीकार सब कर सकते हैं, सब मान सकते हैं, सब ठीक समय अच्छे से उसमें प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक सिद्धांत है, एक जो चीज है उसको मिटाना है और एक पहले से उसको अस्वीकार करना है ही नहीं, तो मिटाने में पहले उसको स्थापन करना फिर मिटाने में बहुत कठिनता होती है। अगर उसको समझा जाए कि ये है नहीं तो मिटाना बहुत सुगुण होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये गोस्वामी महाराज ने कहा है। रामायण में आया है कि ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव केवल मेरा ही अंश है, ये भगवान कहते हैं। अनादिकाल सदा से मेरा ही अंश है। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा शुद्ध है, परम शुद्ध है, परम पवित्र है। इस तरह से इस जीव का स्वरूप स्वतः शुद्ध है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत विशेष बात कही कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सात बात होता है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, छह बातें हुई। तो ईश्वर का अंश है तो कोई ऐसा जीव नहीं जो ईश्वर का अंश न हो, वो स्थावर हो जंगम हो कोई जीव हो, चलने फिरने वाले हो चाहे स्थिर रहने वाले, ये वृक्ष पौधा घास लता द्रुम आदि, ये तो ईश्वर अंश है और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही तो अनेक जन्म पाता है, विनाश हो जाए तब तो काम खत्म हो जाए। अविनाशी इस बात से अनेक जन्म घूमता है, अविनाशी है तो अनेक जन्म लेता है, मुक्ति भी इसकी होती है तो अविनाशी है। और चेतन ज्ञान स्वरूप है ये, और अमल का हाथ इसमें मल नहीं है, स्वतः इसमें मल नहीं है, निर्मल है और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक ये बात है। अब इस बात को अगर स्वीकार कर लें बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। अमल आप निर्मल हो जाए, सहज शांति को प्राप्त हो जाए और चेतनता का अनुभव हो जाए, ज्ञान स्वरूप का आपको अनुभव हो जाए, ये बात एकदम सच्ची है। ऐसी ये भगवान के वचन हैं, भगवान के प्यारे भक्त के वचन हैं। और संसार में हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये बिना स्वार्थ दुनिया मात्र का हित करते हैं। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करें सब प्रीति। तो स्वार्थ मिंत सकल जग माहि, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। परंतु दो ऐसे चले हुए हैं जिनके स्वार्थ है ही नहीं, उनकी वाणी है ये। तो कम से कम ऐसे हमारे हित करने वाले महान मित्र, महान हितेशी, उनकी बात को अपने मानना चाहिए ना। और अपने खास हितेशी बात हम नहीं मानेंगे तो हमारा भला कैसे होगा। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सुवृद्धि, और स्वार्थ निंद सकल जग माहि। ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। तो दोनों ये कहते हैं कि आपका स्वरूप शुद्ध है। अब आप में दोष आए हैं आगंतुक है, और आप में अगर वो वास्तव में तो मिटेगा नहीं। फिर तो आगंतुक आए हुए हैं पीछे से मिलेंगे। सो माया बस भयो गुसाई, वो माया बस में हो गया था नहीं। तो माया के बस ही होने से इसमें ये आया है। तो माया के मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तोड़ते रहे, ये माया है। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी हो संसार, तो मैं मेरा ये जीव ने किया है, ईश्वर का किया हुआ नहीं है, ये जीव का बनाया हुआ है। तो मैं मेरा न मान करके हम पहले से शुद्ध है, मैं मेरे माना हुआ है, तो माना हुआ हम नहीं माने तो मिट जाएगा। मूल में बात ये है कि सबके सब जीव शुद्ध है, निर्मल है, पाप रहित है, अविनाशी है, चेतन है, सहज आनंद स्वरूप है। इस बात को आप स्वीकार करें, इतनी आप कृपा कर दें कि इसको मान लगा है ऐसी बात, तो इसका फिर अनुभव हो जाएगा। अभी अनुभव नहीं होता है। संदेह नहीं है ना, तो आप स्वीकार कर लो, क्या पाप लगे बताओ। आप स्वीकार कर लो कि हम शुद्ध हैं, ऐसे स्वीकार कर लो तो मूल में शुद्ध है ही। तो मूल को ही तो पकड़ना है, खास चीज मूल में परमात्मा है, परमात्मा का ये अंश है, तो हम बिल्कुल शुद्ध है इसको स्वीकार करो। आप मान लो तो क्या हर्ज होता है, बड़ा भारी लाभ होगा। तो ये स्वीकार है कि नहीं आपको? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
स्वीकार कर लिया तो हमेशा ज्ञान रह सकता है क्या?
कहते हैं कि स्वीकार करने के बाद ये ज्ञान क्या हमेशा टिका रहेगा क्या?
बिल्कुल, फिर स्वीकार नहीं करो तो यह बात है, स्वीकार न करो तो यही बात है। बात तो यही है सच्ची, स्वीकार करो तो भी सच्ची है, और स्वीकार कोई भी नहीं करे तो भी सच्ची है। बात तो सच्ची है, भगवान का कहना है, संत का कहना है, स्वीकार करो तो सच्ची, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करो, एक भी स्वीकार नहीं करे तो बात तो यही सच्ची है, फिर स्वीकार क्यों नहीं करो? आप स्वीकार न करने से क्या ईश्वर नहीं रहेगा? ये क्या अविनाशी नहीं रहेगा? क्या चेतन नहीं रहेगा? क्या निर्मल नहीं रहेगा? क्या आनंद स्वरूप नहीं रहेगा? हो ही नहीं सकता। कई भी मन मुनि क्या मतलब है? मुनि तपस्वी मोहन रखा तपस्या आदि करते हैं। देखो रामायण में आया है ये बात, आपने छेड़ दी, सो कहता हूँ आप ये अच्छी नहीं है, आपने पूछ ले तो कह दूंगा। जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस खा गए और खा रहे हड्डियों का ढेर लगा दिया, और जो भगवान का सेवक है करो सदा तिनके रखवाली जिम वाले राखे मातारी पलक बिलोचन गोलक जैसे भगवान के भक्तों को भगवान रक्षे हैं जैसे पलक रक्षा करे मिर्गी जैसे और करो सदा तिनेरे के रखवारी तो तुम्हारे सेवक ये चीज अलग है सूर्य धर्म नहीं अलग है। अब बोलो अलग है कि नहीं एक है तो एक है अलग अलग अब छुपा प्रमाण दे दी ये पंचायत मत करो अभी कौन क्या है क्या नहीं है अपने तो ये विचार करना है कि सबका स्वरूप शुद्ध है एकदम तो आपका हमारा सबका कसाई से कसाई है हत्या से हत्यारा है हत्यारा है उसका भी स्वरूप शुद्ध है नहीं है शुद्ध है ना तो कसाई का भी स्वरूप शुद्ध है तो आपका शुद्ध है बताओ इतना तो आप हम लोग स्वीकार ही नहीं करते भी सब पापी हूँ मैं नामी पापी हूँ कसाई की बात जाने दो आप दूसरी बात अंधाता कृपा करो मैं कहूँ जिसकी बात मानो अंत श्री मुनि की छेड़ दी कसाई की बात छेड़ दी ये प्रसंग नहीं है ये प्रसंग जो आप शुद्ध हो ये प्रसंग है कसाई का प्रसंग नहीं है मुनि का प्रसंग नहीं है ये फालतू बात करते हो आप आपको सुनना नहीं आता इतने वर्ष हो गए अभी तो आपको सुनना नहीं आया जो बात कहें उस पर चलो दूसरी बात कहें कहें पकड़ो नहीं करें क्यों समय बर्बाद करो आप गार्ड मेरा दुनिया का बर्बाद मत करो मूल हम शुद्ध है इस बात पर शंका करो जितनी हो उतनी करो अरे सुन मुनि कही मुनि पकड़ दिया अब कहते कसाई शुद्ध है कसाई शुद्ध है वो स्वीकार करे अब क्या मतलब स्वीकार करे ना करे आपको क्या मतलब है अब अरे कौन कसाई आप कसाई हो जो आपको स्वीकार करने बात अलग है थोड़ा सा सुनना तो सीख लो प्रसंग चलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि ये स्वतः शुद्ध है सो माया बस भयउ ये माया बस हुआ है नहीं सो माया बस भयउ गुसाई बंधो कीर मरकट की नहीं तो कीर मरकट में उदाहरण दिया है कई बार बताई ये बात इस याद होगा आपको बताई है ना तो वो माया बस हुआ जो खुद बंधा है खाने में पीने में खाने में तो बंद कर ले पीने में सुबह बंधा तो लौकिक चीजों खाने पीने में फंसे हुए हो तो आप शुद्ध वैसे निर्बंध बंद सही हो गए तो माया बस भय हो आप मेरी बात ध्यान देकर सुने अभी नहीं पीछे पूछे अभी नहीं पूछे और पीछे दूसरे सत्संग हो उसमें पूछो तो भयऊ का अर्थ क्या है भयऊ का अर्थ दो होता है एक भयऊ का अर्थ होता आदि पीछे हुआ आदि हो गया तो अनादि कहता है शास्त्र तो खट ये अनादि क्या मैं ब्रह्मानंद मानिए अनादि कहा है अरे भयऊ कैसे कहा गोस्वामी जी ने इस शंका होती है तो भयऊ का अर्थ शादी करना नहीं है शादी करना नहीं है ये आगंतुक है ये कहने का तात्पर्य है भयऊ का अर्थ है आगंतुक है आपका स्वरूप नहीं है माया बस होना आपका स्वरूप नहीं है आपका स्वभाव भी नहीं है और स्वतः नहीं है भयऊ है भयऊ कहने का मतलब आगंतुक अनादि निषेध करने का नहीं है भयऊ का अर्थ ये है तो माया बस भयऊ तो हुआ है ये आगंतुक दोष है सदा दोष हो रही है आप शरीर के साबुन लगाओ तो साबुन आगंतुक दोष है आपके फफोला था ऊपर गया है वैसा पानी उतर जाएगा ऐसे ये माया बस है ये मिट जाएगा क्योंकि ये पीछे हुआ है ये पैदा हुआ है ये और इस अंश जीव अविनाशी अनादि है अविनाशी है ये दोष सदा शांत नहीं है आप जितने बैठे हो उनसे मैं पूछता हूँ कि काम है क्रोध है लोभ है ये जो दोष है देश आते हैं जाते हैं ये अनुभव है कि नहीं किसका अनुभव है कि ये हरदम रहते हैं आप में हो तो आप रहते हैं, ये नहीं रहते तो आपके साथ कहाँ है? कोई बोलो आपके साथ रहते हो बताओ। आठ पहर भी काम रहता होगा, क्रोध रहता होगा, लोभ रहता होगा, कोई भी दोष आपके साथ हरदम रहता है क्या? कोई बोलो इसमें। अरे आप हरदम रहते हो तो आप में होता तो आप रहते तो रहता ही। ये कपड़ा मंगवाए तो मंगा ही रहेगा, सफेद सफेद रहेगा, वो रहेगा तो अग्नि गर्मी रहेगी, सूर्य भी गर्म और प्रकाश रहेगा, तो स्वाभाविक नहीं है ये आप में। ये सबका अनुभव है ना, इसमें बोल दो नहीं हो तो भाई हमारे हरदम रहते हैं। कहते हरदम रहते हैं तो नहीं तो आवे कहाँ से? हमारे भीतर संस्कारों में है। ये आपने माना है क्या? ऐसा दिखता है आपको हरदम पड़े दिखते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी भीतर में रहते हैं, आप में नहीं रहते हैं। ये आते हैं तो मन बुद्धि में आते हैं, स्वरूप नहीं आते हैं। क्या काम स्वरूप में आता है? क्या क्रोध स्वरूप में आता है? क्या लोभ स्वरूप में है? तो ये आगंतुक है, आप में नहीं है। अब कृपा करके इसको मान लो तो मेरे पर बहुत कृपा मानूंगा मैं, बड़ी अनुग्रह आपका होगा, आप मायूत्वपूर्ण मानूंगा। आपने मायूत्वपूर्ण क्यों मेरे पर? स्वीकार करो कि वास्तव में अपने में ये दोष नहीं है। आप मान ले तो हमारे में दोष है, इस वास्ते आते हैं, हमारे संस्कारों में दोष है। तो संस्कार पैदा हुआ है कि नित्य है? संस्कार मान लो तो संस्कार नित्य है कि अनित्य है बताओ? अनित्य तो अनित्य हुई हुई नहीं, अपने में वही नहीं है। आप में नहीं है, मन बुद्धि में आते हैं, स्वभाव में आते हैं, शरीर में आते हैं, यूं कह दो। तो आप में ये दोष नहीं है, इस बात को स्वीकार करो, कृपा करो। आपकी कृपा मानूंगा, मायूत्वपूर्ण मानूंगा, आपने बड़े मायूत्वपूर्ण को मेरे पर तो मान लिया। और लाभ है आपके मेरे दुनिया मात्र के लाभ है, तो ये आगंतुक है, इतनी बात मान लो। अभी अनुभव नहीं हो तो मैं सही। अक्षर सीखता है आदमी तो क ख सीखता है बच्चा तो सीखता ही पूरा कह देता है क्या? क्या पढ़ लेता है कागज? ये वर्णमाला पढ़ लिया, उसे द्वादश अक्षरी बार खड़ी पढ़ ली, इतना पढ़ लेने पर पुस्तक पढ़ लेगा? तो पुस्तक पढ़ते ही नहीं तो वो भी पढ़ लेगा। पहले मानना भी पड़ता है ये क है, ये ख है, ये ग, ये तो मानना पड़ता है ना। ऐसे कृपा सिंधु आप इसको मान लो कि वास्तव में दोष आगंतुक है, आपके स्वरूप में नहीं है। तो हमारे स्वरूप में दोष नहीं है ये पहले मान लो तो ये दूर होना शुरू हो जाएगा, और अपने में मान लो तो दूर करना कठिन हो जाएगा। ये सब में आफत आ रही है। ध्यान देकर सुने मेरी बात को, अब चुप हो रहे। सब में ये आफत आ रही है कि बार बार दोष आते रहे, हमारे सताते हैं, तंग करते हैं, हम दुख भोगते हैं और बार बार आते हैं, आते हैं तो मान लिया हमारे में है। तो सबकी शिकायत है कि हम दुख पाते हैं दोषों से। तो वो दोष आप में नहीं है ये कहने में, आपको स्वीकार करने में भार पड़ता है, बोझ लगता है, हम नहीं कैसे जाने हमारे तो आते हैं। और फिर हम आते हैं तो मैं ही कहता हूँ आते जाते हैं, आप में नहीं है। मैं भी तो कहता हूँ आते हैं, आने आगंतुक है, आप में नहीं है, तो इसको स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करने पर निर्दोष तो आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगी, और दोष को मानकर हटाओ तो कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अभी तो हटे नहीं, कैसे हटेंगे? क्योंकि आपने अपने में मान लिया, हटाने वाले क्या करेगा? ब्रह्मा जी भी यहाँ पर क्या करेगा? आपको हमारे में है, अब कौन हटावे? तो मान लेने पर हटना बड़ा मुश्किल है, मान करके दोषों को हटाते हैं। आप ध्यान देकर सुने, मैंने कई बार बात कही है, फिर कहता हूँ आप ध्यान दें, ध्यान दें। हटाते हैं तो दृढ़ करते हैं उसको, क्योंकि दृढ़ मान रहे हैं तभी तो हटाते हैं। ध्यान दिए मेरी बात को? अपने में दोष है तभी तो हटाते हैं, जो हटाते हैं क्यों वो दृढ़ होता है। आप समझोगे हम हटाए, हटता है कहाँ? हटाए तब नहीं हटाए, क्यों घटाते हैं जो दृढ़ मानते हो, है बड़ा मजबूत है, मैं निकलता नहीं, काम क्रोध मिटता नहीं, बड़ा मजबूत है, बड़ा निकलता नहीं है, तो हटाने में तो दृढ़ होता है बाबा। इस वास्ते हटा नहीं है ही नहीं तो क्या दृढ़ होगा, दड़ी कट गई सी है ही नहीं, तो आप में दोष नहीं है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हैं, कृपा करके इसको स्वीकार कर लो। अब ये बात रही कि भी आते हैं भगत पर, अब क्या करें, तो सबसे पहली बात ये मानो कि आगंतुक है, घर का मालिक होता है वो तो बैठा है, कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या घर का, निकलो बाहर, ये तो घर का मालिक है ही नहीं, तो घर के दोष है नहीं, तो कुत्ता आ जाए घर में जो है आपको, कुत्ता तो घर में आ गया सर, अरे कुत्ता आ गया निकाल दो। एक बालक बोला माँ से कि माँ मक्खी है उड़ा दे बेटा, ए दू है, अब दू कहाँ से रे सर, मक्खी बैठी माँ के उड़ा दे बेटा, ए दू है, तो अब बड़ी मुश्किल होगी, जू आप करते हो मेरे बोलते है, अरे भाई उड़ा दे दो है, दो नहीं उड़ेगी, हजारों में उड़ जाए, तो ये आप में आगंतुक है, आते जाते रहते हैं। आगमा पाए नो अनित्या, गीता कहती है आगमा पाए न अनित्या, है जाने वाले अनित्य हैं, इस बात को मानने लगे जाने वाले। अब कि कैसे हटे भाई हटे, अरे हटे क्या आप है ही नहीं, फिर कैसे हटे वही बात कैसे हटे, तो आप मूल में मानते हो तो अभी प्रश्न उठता कैसे हटे, कैसे हटे मत करो कि निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न होना चाहिए, ये हटे कैसे, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, हटे कैसे में तो मान्यता है दृढ़ होती है, अब हटे कैसे, हम कहते हैं कि आपकी निर्दोषता का आपको अनुभव हो, ये प्रश्न कर सकते हैं कि निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न सही है, हटे कैसे, ये ठीक नहीं है प्रश्न, अच्छा निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, तो क्या हरदम आप में दोष रहते हैं, तो अनुभव ये प्रत्यक्ष है ना, हमारे हरदम नहीं रहते, ये अनुभव है ना आपको, कहते आगंतुक आ जाते हैं हमारे को तो विकल कर लेते हैं, जड़े कोई बिल्ली कबूतर को पकड़े जो हमारे काम और क्रोध आते हैं तो हमारे तो फपेड़ देते हैं, जो ये हमारा तो अनुभव है, आए हुए फपड़ते हैं ना, हरदम नहीं है, तो ये हमारे में नहीं है, ये अनुभव कैसे हो, तो सबसे पहले आपका स्वरूप शुद्ध है और ये दोष आप में नहीं है, इसको आप स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से मिट जाएगा, अरे भाई सच्ची बात स्वीकार करने से तो सिद्ध होगी, नई बात स्वीकार करे तो कठिनता होती है, परंतु है जैसा स्वीकार करने में तो सिद्ध हो ही जाएगी, क्यों है ही ऐसा ही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ता कंठित कर दे रहे हो, बढ़ दे हो, विचार करते ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं नहीं, शंकराचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, वेदांत माता है, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अब ये बात की हमारे शुद्धि का अनुभव कैसे हो, तो अवार आप बैठे हो क्या काम को लोभ है, तो निर्दोषता का अनुभव तो हरदम होता है, सदोषता का अनुभव तो कभी कभी होता है, जब काम करो लोग आ जाते हैं तब सदोषता का अनुभव होता है, निर्दोषता का अनुभव तो स्वतः है, इस वास्तव अनुभव है, महाराज स्वतः रहता नहीं, आते जब हमारे को तो तंग कर लेते हैं, क्या करें, ये तो मिटता ही नहीं, फिर भी मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं अर्थ है, मिटता नहीं शब्द मिटता मत मानो, कि निर्दोषता का अनुभव तो होता ही नहीं, तो अभी हो रहा है कि अभी तो हो रहा है, निरंतर तो नहीं होता, ये प्रश्न ठीक है, निरंतर निर्दोषता का अनुभव नहीं होता, तो इनसे रहित स्वरूप का अनुभव तो अभी हो रहा है कि कोई सही दोष नहीं है, तो कि आगंतुक कैसे मिटे, आप पहले ये मान लो हमारे में नहीं है, आते हैं तो आने जाने वाले हैं, उनको अपने में नहीं आना चाहिए, तो आने को बिठा दो, आवे नहीं, आना बंद करो, कि आना बंद हमारे से होता नहीं, आप ध्यान रखो कि विक्रोध नहीं करना है, कामना नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, क्योंकि हमारे किए हुए आते हैं, हम अगर थोड़ी देर नहीं आएंगे, कहते हमने कई बार किया, मिटते नहीं। अगर आपसे नहीं जाते, आते हुए बंद नहीं होते, तो आपकी परवशता का अनुभव होना चाहिए, स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए। इन दोषों से हम तो तंग आ गए और मिटते हैं, क्या करें। तो खूब प्रयत्न करो, आवे ही नहीं, आ जाए और अपने से मिटाने की चेष्टा करने पर भी जाते ही नहीं, तो हे नाथ पुकारो, आर्त होकर के मिट जाएंगे। दुखी होकर के, रो करके हो, हूँ हारियो बो बिन जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास, बस हो कभी जब प्रेरक प्रबल दे तो प्रभु को, हे नाथ मैं तो हार गया, मैं तो इन दोषों से बच नहीं सकता, आप कृपा करो। असली भीतर से रो कर करोगे पट मिट जाएंगे, और नहीं मिलते प्रार्थना करते ही रहो, करते करते कभी न कभी ठीक हो जाएगी, पट मिट जाएगा। मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर को चलाते हैं तो सामने चाबी होती है ना, उसको यूँ घुमाते हैं। अब घुमाते एक दिया खट पंखा चल पड़े, और 20 दिया नहीं चल, 21 में चल पड़ा, तो आटे लगाते ही जाना से चलेगी तलेगी है ही, तो बार बार भगवान से कहते रहो, कहते कहते फट हो जाएगा, कब उग दिए दयालु के भनक पड़ेगी कान, ठीक हो जाएगा। तो ये बात आज खूब अपने समझ लो, इसको स्वीकार कर लो और मिट जाएगी, अपने मिटाओ मिट जाएगी, नहीं तो भगवान से वो मिट जाएगी। बार बार पूछो, सत्संग करो, सत्संग में पूछो, पुस्तकों को देखो, मिट जाएगी। नारायण 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 नारायण। अब बोलो हमारी बात ठीक है कि नहीं।
दुखी होकर के बड़े हैं तो हो सकता है ठीक है
जी,
दुखी होकर पाने से मिटता ही उपाय तो वो ठीक है,
वो ठीक है। तो फिर लो काम में लो, कोरा ठीक करने से क्या होगा, आप राजी हो गए, हम राजी हो गए,
काम में नहीं लेगा उसे तो नहीं आएगा, काम में ले तो हो सकता है।
तो फिर कब लोगे, बूढ़े तो होने लगे, सुबह एक बार होने, कब लोगे वो, किस दिन के लिए छोड़ा है इसको, ये उधार क्यों छोड़ा है। उद्धार उधार नहीं है, नकद है, उद्धार उधार नहीं है, ये तो नकद है। अब
महाराज जी, जैसे निर्दोष का स्वाभाविक स्वरूप है तो दोष आते क्यों है,
आते क्यों है, इसका अर्थ हुआ कि शरीर को मैं और मेरा मानते यूं आए, जो शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो और आपका शरीर नहीं है, आप शरीर को मेरा है और मैं शरीर को ये मानते इस बात आते हैं, मूल दोष ये है। तब बोलो ये बात है, नारायण 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 चलो भाई।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम
नारायण राम 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 राम। बोलो भाई क्या सुना है, मुझे ख्याल में आई आपकी बात, एक बात बताओ बढ़िया, हमारे ये बात आई ऐसी बढ़िया बात बताओ, एकदम बढ़िया है और आप स्वीकार कर लो तो निहाल हो जाएगी बात, ऐसी बात है। देखो भाई कृपा करो आप, मेरी बात है तो ध्यान दो और वो बिल्कुल आप स्वीकार कर लो उसको, इतनी जरूर है। आप ऐसी कृपा करो कि अपने आप को आप सर्वथा निर्दोष माने, अपने स्वयं में अपने में दोष नहीं है ऐसा आप माने, दोष मिट जाएंगे। ये दोषों को निमंत्रण देना है कि मेरे में दोष है, मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दंभ है, पाखंड है, अहंकार है, अभिमान है, ये अपने में न माने आप कृपा करें। आपको कृपा कैसे माने, हमारे काम है, हमारे में लोभ है, फिर नहीं कैसे माने, ध्यान देना बात बताता हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल, मन नहीं है, दोष नहीं है, सहज सुख राशि। इस तरफ आप ध्यान दें। अब बात बताता हूं कि मूल में आप हम सबके सब परमात्मा के अंश हैं, ये बात सच्ची है ना। तो परमात्मा में दोष नहीं है तो उसके अंश में दोष कैसे है, और अंश में दोष है तो अंश में दोष कैसे नहीं है। तो परमात्मा सर्वथा निर्दोष है तो उसका अंश सर्वथा निर्दोष है। कि बात ये तो ठीक है परंतु हमारे में तो दोष दिखते हैं, कामना होती है, लोभ होता है, क्रोध आता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, और दूसरों का दोष दिखते हैं कि ऐसा दोष नहीं भी है, तो हमारे में दूसरों में दोष दिखते हैं, दिखते हैं बात ठीक है, परंतु वास्तव में परमात्मा का अंश है उसमें दोष है क्या, ये पहले बताओ। क्योंकि परमात्मा अंश दोष तो नहीं है, हमारे में दोष दिखते हैं तो दिखते हैं, इसका अर्थ है कि आपने दोष किया है, कोई न कोई दोषी काम किया, दोष के वश में होकर कोई काम किया है, इस वास्ते आप दोषी हो गए, ये बात है। और दोष है नहीं, आपने दोष किया है उसने अपने में दोष है, तो भूतकाल में दोष हुआ था उस दोष को लेकर आप दोषी मानते हैं, क्या अभी आप में वो दोष है। अभी जैसे क्रोधी है, कामी है, कोई लोभी है, कोई द्वेषी है, कोई मोही है, ऐसा है, परंतु अभी आप में है क्या क्रोध, बताओ भाई क्रोध क्यों करे, किस पर क्रोध करे, क्यों करे, क्रोध है नहीं अभी। तो आप में निरंतर क्रोध नहीं रहता है, आगंतुक दोष है वो भी पूर्व क्रोध किया उसके अनुसार। आप ध्यान से सुने हैं कि आप क्रोधी नहीं है, मूल में क्रोधी नहीं है, क्रोध हुआ है आपके द्वारा, कामना हुई है आपके द्वारा, लोभ आपके द्वारा हुआ है, पर अभी लोभ दोष क्रोध नहीं है। क्यों नहीं है कि परमात्मा के अंश, वास्तव में तो हम परमात्मा के अंश हैं, वास्तव में दोष नहीं है, ये बात तो सच्ची है ना। तो पहले काम क्रोध आदि के बशीहूर कोई काम किया है तो भूतकाल के दोष के कारण से अभी वर्तमान में आप अपने को दोषी न माने, पक्की बात है। वास्तव में मूल में मैं परमात्मा का साक्षात अंश हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं बहुत बार कहता हूं मैं परमात्मा का हूं, तो परमात्मा का हूं मैं तो मेरे में दोष कहां है, परमात्मा दोष हो तो हमारे में आवे। एक कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, नहीं जो मरे बलाए, राम नहीं मरे नहीं मैं मर जाऊं क्यों, अकेला राम जी मर गए सब सब मर जाए सब, अकेला क्यों मर गया हम तो दोष है हुए आए हुए दोष, आगंतुक दोष है, दोष है नहीं हमारे में। ये एक मूल की बात है, केवल भगवान की तरफ आप देखें कि भगवान में कोई दोष नहीं तो मूल में मेरे में दोष नहीं है, ये ठीक है ना, ये तो बात ठीक सही है ना। तो कि परमात्मा में दोष हो तो हमारे में दोष, परमात्मा में दोष है ही नहीं तो उसके अंश में दोष कैसे हुआ, हमारा दोष नहीं है। दोषी काम करने से हम अपने दोषी मानते हैं, ऐसे दोष के वशीभूत हम काम ने किया है तो हम दोषी हो गए। इसमें एक सिद्धांत बतावे, जैसे हम दोषी नहीं है इसमें एक सिद्धांत बताया कि हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं, इस बात से दोषी नहीं है। ऐसे ही दोष किया है इस बात से हम दोषी हैं, इसमें भी एक बताओ मार्मिक बात। आपके हमारे प्राय आदमियों में ये जची हुई है कि दोष करने से दोष होते हैं। दोष किया इस बात दोषी, वो चोरी करी इस चोर हो गए, एक रची हुई बात है। कामना पूर्व काम के कामी हो गए, लोभ पूर्व या लोभी हो गए, क्रोध पूर्व काम के क्रोधी हो गए। इसमें एक मार्मिक, जैसे हम परमात्मा के अंश हैं, इसको आप याद रखें। भाई बहन सब ध्यान दें, हम परमात्मा का अंश है, साक्षात हम परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है जीव। तुम परमात्मा का अंश हो, उसमें दोष नहीं है, दोष पिछले आगंतुक हुए हैं, ये पक्की बात है ना। इसी तरह से ही एक पक्की बात और है, मनुष्य समझता है हम दोष करने से हम दोषी हुए, ये नहीं है। सिद्धांत में अपने को दोषी नहीं मानता, उसी दशा दोष नहीं होता है। दोषी खुद को मानता है तब दोष करता है। हम लोगों के जची हुई है कि दोषी प्रवृत्ति के कारण हम अपने को दोषी मानते हैं, हमने दोष किया है। तो दोषी हम नहीं थे, दोष का काम करने से हम दोषी हुए हैं, इसमें एक मार्मिक बात है। जैसे हम परमात्मा के से मार्मिक बात है, ऐसे वास्तव में दोष पहले स्वीकार करता है मनुष्य, फिर दोषी होता है। अपने में दोषी स्वीकार करता है, फिर उसके द्वारा दोष की प्रवृत्ति होती है। जैसे चोरी करके हम चोर बने हैं ऐसी बात दिखती है, परंतु ऐसी नहीं। चोरी करने से पहले हम चोर हैं ये भाव आया है, तभी चोरी कर सकते हैं। हम चोर हैं ही नहीं ये पक्का, उस चोरी नहीं कर सकते आप। ख्याल किया कि नहीं? कोई भी दोष होता है तो दोष को स्वीकार पहले करते हैं, दोष जन प्रवृत्ति पीछे होती है। अपने को चोर न माने के मैं चोरी करी नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता। ख्याल करना, ये बात बहुत मार्मिक बात है। मैं चोरी कैसे कर सकता हूं, मैं चोर हूं ही नहीं, तो चोरी नहीं कर सकेगा वो। अपने में ढिलाई होती है, मन में आती है कि मुफ्त में चीज मिलती ले लो, अपने क्या क्यों कमानी पड़ती नहीं, उठा ले लिए घड़ी हो जाएगी पास में अपने। तो पहले भाव में चोरी आती है, मैं चोर हूं तब तो चोरी करता हूं। ये बात एकदम मार्मिक बात है। जैसे मैं परमात्मा का अंश हूं ऐसा आप स्वीकार करेंगे तो आप अपने को दोषी नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप जब तक दोषी नहीं मानेंगे तब तक दोष आप कर नहीं सकते। तो दोषी मान्यता पहले होती है, दोष का आचरण पीछे होता है। परंतु मान्यता मान ली कि दोष का आचरण करने से हम दोषी हुए, चोरी करने से हम दोष चोर हुए हैं, ऐसा नहीं। पहला हम सर्वथा निर्दोष है, चोर है ही नहीं, चोरी कभी नहीं होगी। इब जिला ही आएगी ना इसमें तब चोरी करूंगा। तो चोर बनकर के चोरी करता है, चोरी रहित आदमी चोर नहीं कर सकता। झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोल रहा हूं मैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। मैं नशेला हूं इस वास्ते नशा करता है, मांस खोर है इस वास्ते मांस खाता है। मैं मांस खाता ही नहीं, मैं मांस भक्षण करता ही नहीं। कर लोगे फिर मांस भक्षण? आप ताकत नहीं कर लोगे अभी? हाँ हाँ, तो धारणा आप मत करो पहले। एक तो मूल में आप परमात्मा के अंश हैं, एक दोष भीतर में दोष की धारणा मत करो। कैसी बढ़िया बात है, ये दो बात अगर आप कर गए तो आप निर्दोष हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी आपको हम नहीं मान सकते तो एक बात तीसरी और बताओ कि भाई हुई सो हुई, अब दोष नहीं करेंगे। ये तो सीधी बात है, ये तो आचरण की बात है। तो जो भक्ति बीत गई, अब हम साधक हम दोष कैसे करेंगे? अब दोष नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अनाचार अत्याचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि हम साधक हैं, भगवान के हम हैं, हमारे दोष है नहीं। और साधन की सोच क्यों नहीं? हम साधक हैं तो अपने आप को साधक माने आप, जैसे कृपा करो। लोग तो कहते हैं तुम ब्रह्म मानो अपने को, तो ब्रह्म मानना है वो बढ़िया ठीक है, एकदम ठीक है, पर ब्रह्म जल्दी माना नहीं जाता है, केवल सीखा जाता है। और ये जो सीखा, ये सीखा नहीं है, तो मानना है कि हम दोष नहीं करेंगे, वो साधक है। हम सिद्ध है ये मानने में तो कठिनता होती है, मानने पर भूल हो जाती है, क्योंकि वो अनुभव नहीं होता है। और हम दोष नहीं करेंगे, अब कोई काम खराब नहीं करेंगे, क्यों? खराब है ही नहीं, हम साधक हैं। ये बात है खास। हाँ, यहां से चलो फिर ब्रह्म हो जाओगे। तू ब्रह्म तो हो ही, है वह चीज तो हो ही जाएगी, उसकी मानने की जरूरत नहीं है। जो चीज है उसे माने गया वो तो है ही। गंगा जी मानो, माने गया गंगा जी है, तो ब्रह्म रूप तो है ही, वो मानने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ज्ञान मार्ग में मांगना प्रधान नहीं है, ज्ञान मार्ग में जानना प्रधान है। तो ये जानना कि हम दोष नहीं करेंगे, हम दोषी नहीं हो, हमारे में अवगुण है नहीं, अवगुण करेंगे नहीं, हम अब ठीक रहेंगे। पूरा आदत के कारण हो जाएगा कोई तो आश्चर्य, ये कैसे हो गया व्यवहार से, हमारे से ये कैसे हो गया? कि तो कोई भूल हो गई, हो गई, अब नहीं होगा उसको, अब नहीं होगा, फिर मिट जाएगा। क्योंकि दोष जो हमें जड़ नहीं है, दोष हमें सत्ता नहीं है, गुणों में तो सत्ता है, देवी संपत्ति है, देवनाम परमात्मा का है, इस बात देवी संपत्ति की सत्ता है, आसुर संपत्ति की सत्ता नहीं है, पूर्व में सत्ता नहीं है इसकी, ये इसकी जड़ नहीं है, ये आगंतुक है, ऊपर के है। इस बात से ये दोष करेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। ऐसा विचार पक्का हो जाए हमारा कि हम निर्दोष है, तो निर्दोषता आपकी प्रकट हो जाएगी स्वाभाविक। जैसे मैं जेब कतरने वाला हूं तो जेब कतर सकता है, कि मैं जेब कतर हूं ही नहीं, कैसे कतरूंगा मैं? तो अपने में भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध है। दूसरा, साधक हूं मैं तो साधक में दोष नहीं होना चाहिए। अगर साधक में दोष हो तो सिद्ध में दोष होगा, अगर सिद्ध में दोष हो तो मुक्त कभी होगा ही नहीं, मुक्त कैसे होगा? इस बात से ये अपने पहले धारणा करेगा, हमारा दोष नहीं है, हमारा वास्तव स्वरूप निर्दोष है, परमात्मा का अंश होने से मूल में, और दूसरा अब साधक होने के कारण से हमारा दोष नहीं है, हम साधक है। हम चोर थोड़े हैं, हम बेबीचारी थोड़े हैं, अनाचारी थोड़े हैं, अत्याचारी थोड़े हैं, अब हम साधक हैं। तो साधक है उसकी दो बात होती है, एक तो साधक का अभिमान होता है, अभिमान तो दोष करा देगा, साधक का अभिमान नहीं। हम साधना करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, सत्संग के द्वारा अपना उद्धार चाहते हैं, तो हम सत्संगी है, हम दोषी कैसे है? हम सत्संगी है। सत्संग क्यों है? साधक हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले हैं, तो ये बात आप स्वीकार कर लें। अब इसमें शंका होती है क्या? कोई कृपा करके स्वीकार कर लो इस बात को कि आप दोषी नहीं है। अचानक कोई दोष हो जाए तो पुराने अभ्यास से कोई किसी परिस्थिति के कारण से हो जाए तो ये कैसे हो गया भाई? आज तुझे को ये हमारे में कैसे आ गया? कहते कोई आया नहीं हमारे में, ऐसी कोई संग के कारण से ऐसी कोई भूल हो गई, हमारे भाई भूल हो नहीं सकती, ये स्थापना कर दो अपने। अब हम दोष की प्रवृत्ति करेंगे नहीं, कभी दोष के प्रति मूल काम करेंगे नहीं। अब दोष जो अचानक होते हैं उसमें कारण क्या है, अब वो बतावे, अगर उसे ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा। एक मार्मिक बात है, ये संयोग जन्य सुख की लोलुपता ये खास चीज है। सब दोष अवे दोष जन्य सुख की लोलुपता, संयोग जन्य दोष की लोलुपता, आलस्य जन्य सुख की लोलुपता, भोग जन्य सुख की लोलुपता, संग्रह करने से जो सुख होगा रिपीत हो जाए उसकी लोलुपता, ये लोलुपता खास दोष कराने की चीज है। ये लोलुपता मतलब को धन मिलना है उतना मिल जाएगा, लोलुपता रखने से ज्यादा मिलेगा या नहीं है, लोलुपता रखने से बाधा लगेगी, इधर है दोषों की। तो सुख भोग की लोलुपता है ये संपूर्ण दोषों की जड़ है। तो हम सोचो सुख लोलुपता नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, साधक हैं हम, भोगी थोड़े ही है, भोग दिन सुख तो भोगी चाहता है, हम भोगी नहीं है, इतना दिन थे भोगी तो थे अब नहीं है, अब हम साधन करेंगे परमात्मा कर्म चलेंगे, अब भोगी नहीं है, अब तो हम योगी हैं, अब तो हम साधक हैं, हम तो जिज्ञासु हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान के थे पहले ही शुद्ध और फिर गलती कर दी, अशुद्धि आ गई, अब गलती नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कि हमारा उद्देश्य सुख भोग नहीं है। पहले पैर में कलकत्ता गया तो हमारे गुरु भाई थे, उनसे दूसरे साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कलकत्ते गए हैं तो कितना रुपया लाए हैं, तो दुनिया कलकत्ते जाती है रुपया लाती है, मैं एक रुपया नहीं लाया, जिस कलकत्ते से आने वाले रुपया कमा कर आते हैं, एक रुपया मेरे पास नहीं, क्यों नहीं, हमारे से उद्देश्य नहीं, रुपयों के लिए हम गए नहीं कलकत्ता, रुपयों के लिए जाते तो कुछ लोग ले जाते, कोई भेंट दे देता, किसी को मांग लेते, किसी कुछ कोई हुनर करते ही समझे, रुपये के लिए हमारा उद्देश्य नहीं, तो हमारा उद्देश्य भोग है ही नहीं, हमारा उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति का है, कोई भोग की इच्छा हो जाए तो विशुद्ध ना, ये अपना काम नहीं है, कभी मन चल जाए कि थोड़ा रुपया ले लें यहां से, अरे ये हमारा काम नहीं है, थोड़ा भोग भोग ले, ये हमारा काम है ही नहीं, बड़ी लाभ वाला लाभ होगा। तो सोचो सुख लोलुपता के वशीभूत न हो गए, ये ही संस्पर्श जाम होगा, दुख योने एवं संबंध जन जितने सुख है वे दुखों के ही कारण, मात्र दुखों के कारण संयोजन सुख है, ये संयोजन सुख की लोलुपता मन में, ये खास अपने को ये मिटा रहा है तो, और आप मान लो अपने में है नहीं फिर मिटनी सुगम हो जाएगी, है मिटाते हैं ना इससे जल्दी नहीं मिटता है, क्यों है को स्वीकार कर दिया आपने, ये आ नहीं जाए हमारे में सावधानी, फिर इस सावधानी के बाद हम आ नहीं सकते हमारे में, जब हम साधेंगे तो हमारे दोष आएगा, हम तो भगवान के हैं तो हमारे दोष कैसे आएगा, भगवान की कृपा से दोष आ ही नहीं सकता हमारे में, ये बात एक दृढ़ता से अपनी पकड़ रहे तो अपना जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा। कितनी सरल बात है, एक तो परमात्मा के अंश हैं और एक हम भोगी नहीं है, हम लोभी नहीं है, संसार के भोगी हम नहीं, हम तो सत्संगी है, योगी है, चाहे परमात्मा के प्रेमी है, चाहे ज्ञान के जिज्ञासु है, चाहे योग के जिज्ञासु है, जिज्ञासु भी योग शब्द ब्रह्माती बतोते, योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म, वेद में जितने सकाम यज्ञ आदि कहे हैं उन सबसे अतिक्रमण कर जाता है योगी, तो मैं तो योगी हूं, तो मैं साधक हूं, पक्की बैठती है, हम बैठे यहाँ आए क्यों हैं, ये बात है तभी तो आए हैं, यहाँ आते हैं सब अनुकूलता नहीं मिलती, खर्चा लगता है, तकलीफ भी पाते हैं, आए क्यों हैं, सत्संग करने के लिए, तो हम सत्संगी हैं, असत्संगी है ही नहीं, असत्संग कैसे करेंगे, हम सत्संगी हैं, सीधी चाहते पहले बात करो फिर ब्रह्म हो जाओगे, ये ब्रह्म तो हो ही होना नहीं है, बनावटी नहीं करना है, असली इसलिए हम साधक हैं। तो साधक ही सिद्ध होता है और विद्यार्थी विद्वान होता है। बहुत सासू बनती है, पहली बन जाएगी सासू, बहू बने ही नहीं सासू हो जाएगी। होता है कभी ऐसा? विद्यार्थी बनाई नहीं विद्वान हो जाएगा, जिज्ञासु बनाई नहीं ज्ञानी हो जाएगा। जिज्ञासु बनेगा ज्ञानी होगा, और होगा ही क्या आप बताओ क्या होगा? और जिज्ञासु बनेगा तो क्या होगा? ज्ञानी होगा और क्या होगा? तो हम जिज्ञासु है, हम साधक हैं, हम दोषी नहीं है, हम दोष स्वीकार नहीं करेंगे, हम संसार के भोगी नहीं है, हम भोगी है ही नहीं। तो आप ठीक सावधान रहो तो आप भोगी नहीं हो, ये बात सच्ची है, एकदम सच्ची है। क्यों? सत्संग आपको अच्छी लगती है और सत्संग करना चाहते हैं, अगर सत्संग की रुचि है तो भी जल्दी इतने हाजिर हो गया, नहीं तो कौन हाजिर हुआ? मैंने सच्ची बात है, तो अपनी बात ठीक है, तो हमारा जीवन निर्दोष है। आगे तो दोष आया था वो चला गया, दोष आगे तो दोषों की जड़ नहीं है, दोषों की सत्ता नहीं है, सत्ता तो निर्दोष तत्व की है, निर्दोष तत्व है, निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म। तो यही उत्तर सर्गो ये सांग साम्य स्थित अंग माना, जिनका साम्यावस्था मन से तो हो गया उन संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म है, हमारा अंतर निर्दोष और सम है, तस्मात ब्रह्म स्थित स्वतः ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। ब्रह्म पर चलो मत, एक संतों से बात सुनी कि मैं ब्रह्म हूं एक तो, और मैं परमात्मा का हूं। तो ब्रह्म हूं ये तो कि अपने पर हाथी चढ़ाना है, और परमात्मा का हूं ये हाथी पर चढ़ना है। बोलो हाथी पर चढ़ना है, हाथी मत चढ़ना, ब्रह्म अभिमान आ जाएगा, हाथी मंत्र चूर्ण कर देगा, ये हड्डियां चूर्ण हो जाएगी। हमारे ये हमारे हम सीधी सीधी बात है भाई, साधु साई हमारे में दोष नहीं है। तो निर्दोष हो तो संब्रह्म जी हुए, और क्या होगा बताओ? निर्दोष होने पर क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं इसमें तो अभिमान आ सकता है, और निर्दोष नहीं करूं मैं तो दोष नहीं करूंगा। साधक होता है, साधक होता है शेष हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, विद्यार्थी होता है विद्वान हो जाता है, बहु होती कभी सासु बन जाएगी। नारायण 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 नारायण।